नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारमता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण करेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, नवनिर्मित वंदे भारत रेलगाड़ी का शयनयान संस्करण अगले कुछ दिन में उपलब्ध होगा। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने वायुसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह आज से शुरू। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश में असना चक्रवात के प्रभाव से मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तेलंगाना के कई हिस्से में बहुत तेज वर्षा जारी। रोहन बोपन्ना और अल्दिला सुजियादी अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मिक्स डबल्स की क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। पेरिस में पैरालंपिक खेलों में आज भारतीय खिलाड़ी कई पदकों के लिए अपनी चुनौती रखेगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण करेगी। राष्ट्रपति राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित भी करेगी। दो दिन के इस सम्मेलन का आयोजन सर्वोच्च न्यायालय ने किया है, जिसमें जिला न्यायपालिका पर 5 सत्र, बुनियादी ढांचा, समग्र न्यायालय कक्ष, न्यायिक सुरक्षा, मुकदमा प्रबंधन और प्रशिक्षण शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन इन्हें और प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सैनिक स्कूलों में लड़कियों को प्रवेश देने के निर्णय को परिवर्तनकारी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि लैंगिक समानता और लैंगिक न्याय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति है। देहरादून में आज उत्तराखंड के राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के कैडेट्स को संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि लड़कियों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और वैश्विक कल्याण में योगदान देने के लिए तैयार किया जा रहा है। श्री धनखड़ आज ऋषिकेश के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भी जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज बेंगलुरु में नवनिर्मित वंदे भारत रेलगाड़ी के शयनयान डिब्बे का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि वंदे भारत शयनयान का नया संस्करण परीक्षण के लिए तैयार है और अगले 3 महीने में यात्रियों को इन नए डिब्बों का लाभ मिलने लगेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि वंदे भारत शयनयान में कई सुधार किए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वंदे भारत मेट्रो रेल का परीक्षण भी जारी है। स्वदेश निर्मित वंदे भारत शयनयान में यात्रियों के लिए कई सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। वंदे भारत के शयनयान संस्करण में 16 डिब्बे और 883 सीट होगी। रेल मंत्री आज बेंगलुरु में कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वर्चुअल माध्यम से पीलीभीत से मेलानी तक रेल सेवा वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक अवसरों वाला देश है और देश में कारोबारी सुविधा, सुधार, स्थिर नीतिगत व्यवस्था तथा उच्च वृद्धि दर का माहौल भी है। उन्होंने कल इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और एक नव मध्य वर्ग उभरा है। इनकी जरूरतें विकास को गति दे रही है और बाजार में मांग बढ़ रही है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार देश में टिकाऊ इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों के निर्माण को प्रोत्साहन देगी। उन्होंने कहा कि भारत में इस्तेमाल होने वाले 99% से अधिक मोबाइल फोन देश में ही बनाए जा रहे हैं और इस वर्ष एप्पल भी नया फोन भारत में बनाएगा। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज भारतीय वायुसेना के उपप्रमुख का पदभार संभाल लिया। नई दिल्ली में पदभार ग्रहण करने वालों के बाद उन्होंने राष्ट्रीय समर स्मारक पर सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीरों को पुष्पांजलि अर्पित की। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। 13 जून 1987 को उन्होंने भारतीय वायुसेना के युद्धक प्रभाग में शामिल किया गया था। वे रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के भी पूर्व छात्र हैं। वर्ष 2007 में उन्हें वायुसेना पदक और 2022 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। देशभर में आज से राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। यह प्रतिवर्ष 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इस वार्षिक कार्यक्रम की शुरुआत 1982 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के खाद्य एवं पोषण बोर्ड द्वारा की गई थी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए ने संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा 2022 के परिणामों के संबंध में झूठे और भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए शंकर आईएएस अकादमी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और प्रचार करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है ताकि किसी भी सामान या सेवाओं के संबंध में कोई गलत या भ्रामक विज्ञापन नहीं किया किया जाए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के उल्लंघन के मद्देनजर मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा की अध्यक्षता वाली सीसीपीए ने शंकर आईएएस अकादमी का खिलाफ भ्रामक विज्ञापन को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया है। सीसीपीए ने पाया कि शंकर आईएएस अकादमी ने विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों का विज्ञापन किया, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा 2022 में विज्ञापित सफल उम्मीदवारों द्वारा चुने गए पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी जानबूझकर विज्ञापन में छिपाई गई थी। मंत्रालय ने कहा कि कोचिंग संस्थान के विज्ञापन में कई तथ्यों का खुलासा नहीं किया, जिससे उपभोक्ताओं को धोखा हुआ। इसमें कहा गया है कि इस तरह के झूठे और भ्रामक विज्ञापन उन उपभोक्ताओं पर भारी प्रभाव जानते हैं जो यूपीएससी के उम्मीदवार हैं। उन्हें यह बताए बिना कि उम्मीदवारों की सफलता में शंकर आईएएस अकादमी की भूमिका है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि विज्ञापन ने उपभोक्ताओं के अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ सूचित होने और सुरक्षा पाने के अधिकार का उल्लंघन किया है। देशभर में आज से राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। यह प्रतिवर्ष 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इस वार्षिक कार्यक्रम की शुरुआत 1982 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के खाद्य एवं पोषण बोर्ड द्वारा की गई थी। रोहन बोपन्ना और उनकी इंडोनेशियाई जोड़ीदार अल्दिला सुजियादी यूएस ओपन टेनिस में मिश्रित युगल क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। इस जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल मैच में जॉन पेस और कैटरीना सेवो को 6-7, 6-10, 7 से हराया। क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला मैथ्यू एब्डन और बर्बरा क्रेक से होगा। बोपन्ना ने मैथ्यू एब्डन के साथ पुरुष युगल के तीसरे दौर में भी प्रवेश लिया है। इस जोड़ी ने स्पेन के रोबर्टो कार्बोलेस बेना और अर्जेंटीना के फेडरिको कोरिया पर 6-2, 6-4 से जीत हासिल की। पेरिस पैरालंपिक के चौथे दिन आज भारत को कुछ और पदक मिलने की संभावना है। पुरुष शॉटपुट F40 फाइनल में रवि रंगोली चुनौती पेश करेंगे। उधर पुरुष ऊंची कूद T47 स्पर्धा का खिताबी मुकाबले में निषाद भी पदक की दौड़ में होंगे। मौसम विभाग ने देश के पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। विभाग ने कहा कि विदर्भ और तेलंगाना में आज तेज बारिश होने की संभावना है। असम, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, केरल, माहे और तेलंगाना में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और रायलसीमा के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान असना के पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे धीरे कमजोर होने की संभावना व्यक्त की है। चक्रवात उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तटों के पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है। तेलंगाना के विभिन्न हिस्सों में बहुत तेज वर्षा जारी है। राज्य में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है और विभिन्न जिलों के निचले इलाकों में पानी भर गया है। राज्य सरकार ने 11 जिलों के प्रशासन को रेड अलर्ट पर निर्देश जारी किए हैं और युद्ध स्तर पर उपाय करने को कहा है। मुख्यमंत्री रेवन रेड्डी ने आपात सेवाओं के अधिकारियों को 24 घंटे उपलब्ध रहने के निर्देश दिए हैं। सूचना और जनसंपर्क मंत्री पी श्रीनिवास रेड्डी ने जिलाधिकारियों के साथ एक आपात समीक्षा बैठक की है और जनता से किसी भी सहायता के लिए जिलाधिकारियों से संपर्क करने की अपील की है। सरकार ने लोगों से अपने घरों के भीतर रहने का अनुरोध किया है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए विभिन्न संभावनाएं तलाश रही है। केंद्रीय मंत्री ने आज नई दिल्ली में एक समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी। डॉ. मांडविया ने कहा कि सरकार उन्हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए व्यापक नीति पर काम कर रही है। गिग श्रमिक वो होता है जो छोटी अवधि के लिए या परियोजना आधारित काम करता है और एक ही नियोक्ता के लिए काम करने की बजाय कई नियोक्ताओं के लिए अपनी सेवाएं देता है। डॉ. मांडविया ने कहा कि श्रमिकों का पंजीकरण ई श्रम पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना की निंदा की है। उन्होंने ऐसे अपराधों में संलिप्त दोषियों को जल्द से जल्द दंडित करने के लिए तंत्र तैयार करने का आह्वान किया। उत्तराखंड में आज एम्स ऋषिकेश के विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों को संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने बल देकर कहा कि ऐसे घिनौने अपराधों से मानवता को शर्मसार करने वाले अपराधियों के विरूद्व कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने डॉक्टरों, नर्सों, कंपाउंडरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा पर भी बल दिया। इससे पहले दो दिन के दौरे के दूसरे दिन आज उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC के कैडेटों को संबोधित किया। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।